लाउडेटर यीशु क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि कैथोलिक विश्वासी यूखरिस्तीय समारोह को अपने हृदय के केंद्र में रखकर मानवीय रिश्तों को रूपांतरित करने में सक्षम बने तथा अपने समस्त भाइयों एवं बहनों और ईश्वर के संग साक्षात्कार के प्रति उदार रहें। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है देवदूत प्रार्थना के पूर्व दिया गया संत पापा फ्रांसिस का संदेश, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तुता है फादर संजय दिलीप एक्का एवं सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की। वैटिकन स्थित संत पेट्रस महागिरजाघर के प्रांगण में रविवार 27 अगस्त को संत पापा फ्रांसिस ने भक्त समुदाय के साथ देवदूत प्रार्थना का पाठ किया, जिसके पूर्व उन्होंने विश्वासियों का आह्वान किया कि वे प्रभु पर अपने भरोसे को नवीकृत करें तथा ईश्वचन एवं संस्कारों में उनकी उपस्थिति को महसूस करें। संत पापा ने कहा, प्रिय भाइयों एवं बहनों, सुप्रभात।
Gesù chiede ai discepoli una bella domanda. La gente, chi dice che sia il figlio dell'uomo?
आज के सुसमाचार पाठ में यीशु अपने शिष्यों से पूछते हैं, मानव पुत्र कौन है? इस विषय पर लोग क्या कहते हैं? संत पापा ने कहा,
è una domanda che possiamo farci anche noi.
इस सवाल को हम भी पूछ सकते हैं, यीशु कौन है? एक गुरु, एक विशेष व्यक्ति, एक भला, धर्मी, सुसंगत, साहसी व्यक्ति, लेकिन उन्हें समझने के लिए क्या ये काफी हैं? और सबसे बढ़कर, क्या ये शब्द यीशु के लिए पर्याप्त हैं? संत पापा ने कहा, जी नहीं। यदि वे भूतकाल के कोई साधारण व्यक्ति होते, जैसा कि सुसमाचार में छवि प्रस्तुत की गई है कि वे लोगों के लिए यूहन बपतिस्ता, मूसा, एलियस या कोई महान नबी के समान थे, तो वे केवल बीते समय की एक अच्छी स्मृति मात्र होते। लेकिन यीशु के साथ ऐसा नहीं है, इसलिए इसके तुरंत बाद विशिष्यों से पूछते हैं, लेकिन तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूँ? मैं अभी तुम्हारे लिए कौन हूँ? संत पापा ने कहा कि यीशु इतिहास के नायक नहीं, बल्कि वर्तमान के व्यक्ति रहना चाहते हैं। दूर के नबी नहीं, बल्कि ईश्वर जो हमारे निकट हैं। ख्रिस्त अतीत की यादगारी नहीं है, लेकिन वर्तमान के ईश्वर हैं। यदि वे सिर्फ इतिहास के व्यक्ति होते तो आज उनका अनुसरण करना असंभव होता। हम अपने आप को समय की एक बड़ी गड़बड़ी में पाते और सबसे बढ़कर हम उन्हें अपना आदर्श नहीं बना पाते, जो एक बहुत ऊंचे दुर्गम पर्वत के समान होते, जिस पर हम चढ़ना तो चाहते लेकिन योग्यता और आवश्यक साधनों के अभाव में नहीं चढ़ पाते। इन सब के विपरीत यीशु जीवित हैं और हमारा साथ देते हैं। वे हमारी बगल में रहते हैं। वे हमें अपना वचन और अपनी कृपा देते हैं, जो हमें आलोकित करता, हमारी यात्रा में ताजगी प्रदान करता है। वे एक कुशल और बुद्धिमान मार्गदर्शक भी हैं।
È felice di accompagnarci nei sentieri più difficili.
बिल्कुल कठिन रास्ते और अगम्य ढलान पर वे खुशी से हमारा साथ देने के लिए तैयार हैं, इसलिए हम अकेले नहीं हैं। संत पापा ने कहा, प्यारे भाइयों एवं बहनों, जीवन के रास्ते पर हम अकेले नहीं हैं, क्योंकि ख्रिस्त हमारे साथ हैं और हमें चलने में मदद देते हैं, जैसा कि उन्होंने पेत्रुस और अन्य शिष्यों के साथ किया था। खासकर आज के सुसमाचार पाठ में पेत्रुस इसे समझता है और कृपा के द्वारा यीशु को पहचानता है कि वे मसीह हैं, जिनका इसी समय इंतजार किया जा रहा है। किसी मरे हुए हीरो की तरह नहीं, बल्कि जीवित ईश्वर के पुत्र के रूप में उन्होंने मनुष्यों को बनाया और हमारी यात्रा की खुशियां और मेहनत साझा करने आए। संत पापा ने कहा,
Se a volte la cima della vita cristiana sembra troppo alta e la via troppo ripida.
आइए हम निरुत्साहित ना हो, तब भी जब ख्रिस्त जीवन का शिखर बहुत ऊंचा प्रतीत हो और रास्ता बहुत ढलान मालूम पड़े, आइए हम यीशु ख्रिस्त को देखें जो हमारी बगल में चलते हैं, जो हमारी कमजोरी को स्वीकार करते, हमारे प्रयासों को साझा करते और अपने मजबूत एवं सज्जन हाथों को हमारे कमजोर कंधों पर रखते हैं। उनके नजदीक रहते हुए आइए हम एक दूसरे तक पहुंचें और यीशु के साथ हमारे भरोसे को मजबूत करें, जो हमारे लिए असंभव लगता लेकिन उनके साथ संभव है। तब संत पापा ने विश्वासों को चिंतन हेतु प्रेरित करते हुए कहा, आज हमारे लिए अच्छा होगा कि हम उस सवाल को दोहराएं जो उनके मुख से आता है, तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूँ। दूसरे शब्दों में, यीशु मेरे लिए कौन है? एक महान शख्सियत, एक संदर्भ बिंदु, एक अप्राप्य मॉडल, या ईश्वर के पुत्र जो मेरी बगल में चलते हैं, जो मुझे पौत्रता की ऊंचाई तक ले सकते हैं, जहां मैं अपने आप नहीं पहुंच सकता।
Gesù è davvero vivo nella mia vita e mi domando, Gesù vive con me? È il mio Signore?
क्या यीशु सचमुच मेरे जीवन में है? क्या वे मेरे प्रभु हैं? क्या मैं कठिनाई की घड़ी में उन पर भरोसा रख सकता हूँ? क्या मैं उनकी उपस्थिति को वचन और संस्कारों में महसूस करता हूँ? क्या मैं उनके द्वारा संचालित होता हूँ समुदाय में अपने भाइयों और बहनों के साथ? उसके बाद संत पापा ने कुंवारी मरियम से प्रार्थना करने का आह्वान करते हुए कहा,
Maria, madre del camino, ci aiuti a sentire il suo figlio.
कुंवारी मरियम, राह की माता, हमें यह महसूस करने में मदद करे कि पुत्र जीवन है और हमारी बगल में उनकी उपस्थिति है। इतना कहने के बाद संत पापा ने भक्त समुदाय के साथ देवदूत प्रार्थना का पाठ किया तथा सभी को अपना प्रेरितिक आशीर्वाद दिया।
Angelus Domini, nunc avit Maria,
et concepit de Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
देवदूत प्रार्थना के उपरांत संत पापा ने विश्वासियों का अभिवादन किया एवं अपनी आगामी प्रेरितिक यात्रा की जानकारी देते हुए कहा,
Cari fratelli e sorelle, giovedì prossimo partirò per un viaggio di alcuni giorni nel cuore dell'Asia.
प्यारे भाइयों एवं बहनों, बृहस्पतिवार को कुछ दिन के लिए एशिया के मध्य मंगोलिया की यात्रा हेतु प्रस्थान करूंगा। उन्होंने मंगोलिया की अपनी प्रेरितिक यात्रा के लिए सभी विश्वासियों से प्रार्थना करने हेतु आमंत्रित किया। प्रेरितिक यात्रा का आदर्श वाक्य संत पापा की मंगोलिया की प्रेरितिक यात्रा के दोहरे अर्थ को रेखांकित करता है, जिसका आदर्श वाक्य है एक साथ आशा करना, पहला प्रेरितिक यात्रा और दूसरा राज की यात्रा। पोप ने इससे अत्यंत वांछित यात्रा और संख्या में छोटे लेकिन विश्वास में जीवंत और उदारता में महान कलीसिया को गले लगाने का अवसर बताया है। पोप ने मंगोलिया की समृद्ध धार्मिक परंपरा को भी याद किया, जिससे विशेष रूप से एक अंतर्धार्मिक घटना के संदर्भ में जानने का सम्मान प्राप्त होगा। उन्होंने सभी के लिए एक भाई के रूप में मंगोलियाई लोगों के बीच आने पर अपनी खुशी व्यक्त की है। पोप ने निमंत्रण के लिए मंगोलिया के नागरिक अधिकारियों और जो बड़ी प्रतिबद्धता के साथ उनके आगमन की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें धन्यवाद दिया है। संत पापा ने सभी विश्वासियों से कहा, मैं आप सभी से इस यात्रा में अपनी प्रार्थनाओं के साथ शामिल होने का आग्रह करता हूँ। 27 अगस्त को माताओं की संरक्षिका संत मोनिका का पर्व मनाया जाता है। संत पापा ने पर्व की याद करते हुए कहा,
Oggi si ricorda Santa Monica, madre di Sant'Agostino.
आज संत मोनिका, संत अगस्तीन की माँ की याद की जाती है, जिन्होंने अपनी प्रार्थना और अपने आंसू से प्रभु से अपने बेटे के मन परिवर्तन हेतु प्रार्थना की। संत पापा ने पीड़ित माताओं के लिए प्रार्थना करते हुए कहा, मैं उन सभी माताओं के लिए प्रार्थना करता हूँ जो अपने बच्चों को खोने के कारण रोते हैं अथवा जिन्हें जीवन में कठिन राहों पर चलना पड़ता है। और अंत में उन्होंने अपने लिए प्रार्थना का आग्रह करते हुए सभी को शुभ रविवार की मंगल कामनाएं अर्पित की।
E tutti auguro una buona domenica. Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.
मसीहा
वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं और अब लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा फ्रांसिस ने 79 वर्षीय कार्डिनल अंजेलो मंजेला की मृत्यु पर अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की। उनकी मृत्यु ब्राजील के पाराना प्रांत लोनिंद्रा में 26 अगस्त को हो गई। संत पापा फ्रांसिस ने अपने तार संदेश में अपनी संवेदना प्रकट करते हुए कहा, वे सदैव प्रेरित उत्साह से भरे थे। सैन साल्वाडोर डी बाहिया के मेट्रोपॉलिटन महाधर्माध्यक्ष कार्डिनल सर्जियो दारोचा के नाम प्रेषित अपने तार संदेश में संत पापा ने कहा, आदरणीय धर्माध्यक्ष को शाश्वत शांति प्राप्त हो। मैं अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए उनके लिए प्रार्थना अर्पित करता हूँ। मैं अपनी प्रार्थना में माता कलिस्से को दी गई लंबी सेवा हेतु ईश्वर के प्रति कृतज्ञता के भाव प्रकट करता हूँ। वे विभिन्न प्रेरिताई हेतु प्रेरित उत्साह से भरे थे, जैसे कि उन्होंने अपनी सेवा तोलेदो के धर्माध्यक्ष, लोंदिना के महाधर्माध्यक्ष, दिव्य आराधना और संस्कारों के अनुष्ठान हेतु गठित समिति के सचिव और अंततः ब्राजील के महाधर्माध्यक्ष और धर्माध्यक्षीय सम्मेलन के अध्यक्ष का कार्यभार संभाला। उधर पुर्तगाल की प्रेरित यात्रा पर पुर्तगाल के यीशु समाजों के संग हुई भेंट वार्ता की विषय वस्तु प्रकाशित की गई। कामुकता और उपभोक्तावादी समाज पर पूछे गए सवाल का उत्तर देते हुए संत पापा ने कहा, हम उस समाज में रहते हैं जो दुनियादारी से भरी है, जो मुझे बहुत चिंतित करती है। धर्म सामाजिक जीवन में दुनियादारी का प्रवेश करना मुझे चिंतित करती है। दुनियादारी की आध्यात्मिकता अपने में आवर्ती जाल है। हमें इसमें अंतर स्पष्ट करने की आवश्यकता है या हमें दुनिया से वार्ता करने को तैयार करता है। इस संदर्भ में संत पापा ने दुनियादारी की आध्यात्मिकता पर व्यक्तिगत रूप में चिंतन करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा, आपको दुनिया के संग संवाद करना होगा, क्योंकि आप अपने में बंद नहीं रह सकते हैं। आपको अंदर से मुस्कुराने वाला, वार्ता करने वाला धार्मिक व्यक्ति बनने की आवश्यकता है। संत पापा ने संत इग्नासियस द्वारा बतलाए गए अंतःकरण की जांच को निरंतर करने पर जोर दिया, जिससे हम अपने हृदय की गहराई में आत्माओं की परख कर सकें जो हमें प्रभावित करता है। गरीबों और प्रवासियों के संग मित्रता और निकटता पर पूछे गए सवाल पर संत पापा ने कहा, संत इग्नासियस की आध्यात्मिकता में गरीबों के लिए और गरीबों का साथ देने का विकल्प प्रकाश में आता है, लेकिन यही एकमात्र तरीका नहीं है जिसके द्वारा सामाजिक न्याय हासिल किया जा सकता है। सामाजिक समस्याओं के निपटारे के हजारों तरीके हैं। लोगों को जीवन में सम्मिलित करना संभवतः एक सुंदर सच्चाई है, क्योंकि इसमें हम अपने जीवन को दूसरों के संग साझा करते हैं। यह आपको लोकप्रिय ज्ञान को जानने और उसका पालन करने में मदद करता है। संत पापा ने कहा, यह एक दिलचस्प बात है। गरीबों के पास एक विशेष बुद्धि होती है, काम करने की बुद्धि और अपनी परिस्थिति को गरिमा के संग जीवन जीने की बुद्धि। कलीसिया के भविष्य के बारे में पूछे गए सवाल का उत्तर देते हुए संत पापा ने कहा कि बहुत से लोग हैं जो वैटिकन द्वितीय महासभा की शिक्षा पर सवाल उठाते हैं। हमें साहस के साथ उसकी आत्मा सार के अनुसार चलने की आवश्यकता है। भविष्य के लिए मेरा सपना यही है, उन्होंने कहा, हम उन बातों के लिए खुला रहें जिसे पवित्र आत्मा हमारे लिए प्रकट करते हैं। हम आत्म परक हेतु खुला रहें, न कि कार्यवार्थ के लिए। भूतपूर्व यीशु सामाजिक अधिकारी पेद्रो अरूपे की बातों की ओर ध्यान आकर्षित कराते हुए संत पापा ने कहा, प्रार्थना के माध्यम यीशु सामाजिक आगे बढ़ता है। इसके द्वारा वह किसी भी चीज से भयभीत नहीं होता, क्योंकि वह जानता है कि उसे ईश्वर अपने कार्यों को करने हेतु प्रेरित करते हैं। एक यीशु समाजी जो प्रार्थना नहीं करता अपने में सूखा हो जाता है। यीशु संघियों के संग अपनी भेंटवार्ता में संत पापा ने कलीसिया के अंदर समलैंगिक लोगों को गले लगाने के अपने आह्वान को दोहराया। उन्होंने यौवन अपराधों पर असंगत निर्धारण की आलोचना की, यह देखते हुए कि अन्य अपराधों को अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। उन्होंने व्यक्तियों को उनकी आध्यात्मिक यात्राओं में साथ देने के लिए संवेदनशील और कल्पनाशील दृष्टिकोण अपनाने पर जोर दिया। उन्होंने हाशिए पर रहने वाले समुदायों तक पहुंचने की आवश्यकता को रेखांकित किया, जो अक्सर अस्वीकृति की भावना से जूझते हैं। उन्होंने सहानुभूति और करुणा के महत्व पर प्रकाश डाला। विश्व युवा दिवस में मिले फलों की उपयोगिता पर चर्चा करते हुए संत पापा ने कहा कि आपको युवाओं की बेचैनी का स्वागत करना चाहिए और उसे विकसित करने में उनकी मदद करनी चाहिए, ताकि वह बेचैनी अतीत की बात ना बन जाए। उन्होंने कहा, विश्व युवा दिवस हर युवा और युवती के दिल में एक पौधा रोपण है। वैटिकन रेडियो के अंद्रिया तोर्नेली ने संत पापा फ्रांसिस की मंगोलिया की प्रेरित यात्रा पर एक संपादकीय लिखते हुए कहा, संत पापा अपनी इस यात्रा में देश के न केवल 1050 ख्रिस्तियों से मुलाकात करेंगे, बल्कि ख्याति प्राप्त और ज्ञानियों से भेंट करेंगे जो महान बौद्धिक परंपरा से संबंधित हैं। उन्होंने लिखा, इस यात्रा के दौरान संत पेत्रुस के उत्तराधिकारी ईशा के कलीसिया को अपने आलिंगन में लेंगे, जो अल्प संख्या में है किन्तु विश्वास और करुणा के कार्यों में महान है। 30 नवम्बर सन 1970 को संत पापा पॉल छाटवें की लंबी यात्रा की याद करते हुए उन्होंने लिखा, संत पापा मोंतिनी ने राजसी शब्द हम का इस्तेमाल करते हुए कहा, यह यात्रा करने का आनंद नहीं है और न ही यह मेरी रुचि है जो मुझे आपके पास ले आई है। मैं आप सबों के पास आता हूँ क्योंकि हम सभी भाई हैं, या बेहतर रूप में कहें तो हम सभी पुत्र और पुत्रियां हैं, और यह उचित है कि एक परिवार के पिता स्वरूप वह परिवार जो कैथोलिक कलीसिया है, मैं हर एक को प्रेम प्रदर्शित करता हूँ जो प्रत्येक जन का अधिकार है। क्या आप जानते हैं कि कैथोलिक कलीसिया का अर्थ क्या है? इसका अर्थ यही है कि यह पूरे विश्व के लिए बनी है, अर्थात यह सबों के लिए है। इसमें कोई परदेशी नहीं है। हर मानव, चाहे किसी भी देश, जाति, आयु या शिक्षण का हो, इसमें अपने लिए जगह पाता है। और इसी के साथ वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त होता है। अगला प्रसारण तमिल में होगा। नमस्कार।